मसीह में बुलाए हुए प्यारे भाई और बहन, हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 32, जिसका नाम है प्रायश्चित के दिन के बलिदान। पिछली क्लास में हमने तंबू के बारे में, मिलाप वाले तंबू के बारे में डिटेल में देखा कि एक एक वस्तु का क्या मतलब है, वो स्वर्गीय स्थापना का प्रतिबिंब था, जैसे स्वर्ग में वो है सेटअप। तो इसी तरीके से इसमें तंबू में बलिदान होते थे, ठीक है, इनको प्रायश्चित के दिन के बलिदान बोला जाता था। पहला बलिदान होता था बैल का और दूसरा बलिदान होता था बकरे का। तो इन सब का क्या मतलब था, इनके बारे में हम पढ़ते हैं लेवी 16 की 6 से लेके 10 तक। लेवी 16, 6 से लेके 10 तक।
16 की 6 से लेके 10 तक।
6 से 10 तक।
परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकाले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बकरे को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए, और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे।
6 से लेकर 10 तक।
और हारून और उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, और एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकाले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकाले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए।
तो थे बलिदान जो तंबू में होते थे। तो क्या देखते हैं हम वचन में कि हारून जो मुख्य याचक होता था, वो जो बैल का बलिदान देता था वो अपने और अपने परिवार के पाप बलि के लिए देता था, ठीक है। पहला जो बलिदान होता था वो जो मुख्य याचक होता था, याचकों के परिवार के लिए होता था, ठीक है, मुख्य याचक के लिए खुद के लिए और
परिवार
के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता था, दो बकरे लेता था और उनको वो जो पवित्र स्थान का दरवाजा था ना, हमने देखा था ना, आंगन के बाद अंदर जो
सेकंड वाला
उसके सामने लेकर आता था और उन पे चिट्ठी डालता था, पर्ची जैसे डालता था। तो एक तो प्रभु के लिए, और जिस पे पर्ची नहीं गिरती थी वो उजाड़ में छोड़ा जाने के लिए, जिस पे पर्ची गिरती थी वो बलिदान किया जाता था पाप बलि के लिए। अभी वो किसकी पाप बलि के लिए, वो सब लोगों की पाप बलि के लिए बलिदान किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये हर साल ऐसा एक दिन होता था जिसको अटोनमेंट डे बोलते थे। अटोनमेंट डे यानी प्रायश्चित का दिन, उस दिन ये दो बलिदान होते थे। अभी ये प्रायश्चित का दिन क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसका जो कनेक्शन यहूदी युग में और आज के ईसाइयों में, ये क्या है प्रायश्चितों का महत्व और कनेक्शन, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो आज हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक प्रश्न पे ध्यान करना बहुत जरूरी है कि जितने भी जानवर बाइबल में बलिदान किए जाते थे, ठीक है। कई लोग सोचते हैं, और जो ईसाई भी ये सोचते हैं कि बाइबल के रीति रिवाज और बाकी धर्मों के रीति रिवाजों में कोई अंतर नहीं, खास करके हिंदुओं में, क्योंकि हिंदू बहुत बलिदान करते हैं मंदिरों में या ऐसे बहुत बलिदान करते हैं। तो बोलते बाइबल में भी तो ऐसे होते थे, तो ईसाई भी ये मानते हैं कि हाँ ऐसे होते थे। लेकिन क्या ये सत्य है? जिस ईसाई को गहरा ज्ञान नहीं है बाइबल के बारे में, वो ऐसा सोचेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की किताब से ढूंढ के पढ़ते हैं, तो हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और ये प्रश्नों के उत्तरों में से एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 50:9-10। मतलब इंसान सोचता है कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन देखो क्या बोल रहा है। देखो पढ़ो,
पचास का 9 और 10। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरी लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं।
देखो, जानवर मेरे हैं और तुम बोल रहे हो मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहा हूं इनका, तो मैं नहीं लूंगा। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं ये, उसको इन जानवरों के बलिदानों की जरूरत नहीं है, और वो किसी के जानवर नहीं है, वो किसके जानवर है? परमेश्वर के। लेकिन हम देखते हैं फिर कि बाइबल में क्यों ये परमेश्वर ने बोला तंबू में बलिदान देने के लिए, क्यों पवित्र शास्त्र में वचनों में लिखा है ये बलिदान के बारे में? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम देख लेंगे। सबसे पहला पहला क्वेश्चन प्रश्न ये कि ये प्रायश्चित का दिन क्या है और क्यों है ये प्रायश्चित का दिन? लेवी व्यवस्था 16:30-34।
लेवी
जी,
और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इज़राइलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए।
क्या है?
लेवी व्यवस्था 30 और 30।
हाँ
का 34 है ना, 30 और 34।
हाँ 30 और
अच्छा,
16:30, पहले 30 पढ़ो फिर 34।
पहले 30 पढ़ना।
वही तो मैं बोला, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे।
तो देखो, हाँ आगे।
यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना।
नहीं, 34 तक बस, 30 पढ़ो उसके बाद 34 पढ़ो
अच्छा, तीस में
पूरा।
नहीं पढ़ना। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इसराइलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए।
तो परमेश्वर ने इज़राइल को एक व्यवस्था दी, एक विधि दी कि इज़राइल को उसके पापों से क्षमा मिल सकती थी उस दिन प्रायश्चित के दिन, और ये साल में एक ही दिन होता था, एक साल में एक बार। तो चलो अब हम देखेंगे कि इस प्रायश्चित के दिन जो ये बलिदान होते थे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला बलिदान क्या था? बैल का बलिदान, ठीक है। पहला बलिदान क्या था? बैल का बलिदान। अब ये बैल का बलिदान हारून और उसके परिवार के लिए था, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं था, ये सिर्फ हारून और उसके परिवार के लिए। तो अभी देखते हैं कैसे करता था ये बलिदान, और उसमें छिपी हुई बात देखेंगे क्या करता था। लेवी व्यवस्था 16:11-14 तक।
हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें।
हाँ, तो ये नोट बात करनी है कि ये बलिदान जो था ये सिर्फ किसी बाहर वाले के लिए नहीं था, ये अपने और अपने परिवार के लिए। हाँ।
और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर जलाते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपने दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित द्रव्य से भरकर।
तो देखो, कोयले लेने हैं सुगंध, दोनों हाथ भर के सुगंधित वो लेनी है और
मुट्ठियां को कूटे हुए सुगंधित द्रव्य से भरकर बीच वाले पर्दे के ऊपर ले आकर उसे धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले।
आग में, तो वो जो वेदी है ना अंदर, उस पे कोयले डाल के, उस पे धूप डाल के, तो ताकि वो क्या करे, अंदर उस पे जो प्राश्चित का जो वो सिंहासन है उसको कवर करे।
जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्राश्चित के ढकने के ऊपर जा छा जाए।
देखो, छा जाए, वो धुआं उधर चला जाए।
नहीं तो वह मर जाएगा।
अगर वो धुआं प्राश्चित के वो बॉक्स जो देखा ना हमने अति पवित्र स्थान में, अगर नहीं जाता तो वो मर जाएगा।
वो देख लेगा तो, है
ना? नहीं देख अगर नहीं लेगा
अगर नहीं जाएगा
तो। अगर वो कवर नहीं करता धुआं उस जगह पे जाके उस प्राश्चित के ढकने को, तो जाचक मर जाएगा।
तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्राश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के।
सो अब वो सामने खड़ा है तो पूरब की ओर, पूरब की ओर दरवाजा है ना, ऐसे सामने खड़ा है, मान लो ये पीछे पूरब है, तो पूरब की ओर ऐसे ऐसे लहू को छिड़के, आगे
उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के।
सो ऐसे, देखो ऐसे और ऐसे, क्रॉस बननी है, ऐसे और ऐसे, कितनी बार? 7 बार।
अच्छा।
ऐसे पूर्व की ओर और सामने, ऐसे 7 बार ऐसे करना है, 7 मतलब 7 क्रॉस बनाने हैं। इसका भी बड़ा खास मतलब है। ठीक है, तो ये था तरीका जिससे ये बलिदान पूरा होता था। अब हम क्या देखते हैं, हारून एक बैल लेता है और बैल को बलिदान करता है आंगन में, उसका लहू लेता है, बाहर वाली वेदी से कोयले लेता है, सुगंधित वस्तुएं हाथ में लेता है, लहू लेता है, पवित्र स्थान में जाता है, कोयले और ये सुगंधित वस्तु वो अंदर वाली वेदी पे डालता है, जिससे क्या होता है, धुआं पैदा होके वो प्राश्चित के ढकने को, प्राश्चित के सिंहासन को कवर कर देता है। अगर नहीं होता है तो बलिदान पूरा नहीं होता है और याचक मर सकता है। उसके बाद, ये होने के बाद, जब प्राश्चित का ढकना ढक हो जाए तो फिर वो लहू लेता है जो बाहर उसने लिया बकरे बैल का, उसको 7 बार क्रॉस बनाता है सिंहासन के सामने।
छिड़कना बोल रहा है उंगली से, छिड़कना।
हाँ, तो छिड़कना ऐसे, ये भी बोल रहा है ना, पूरब की ओर छिड़कना। ठीक है, पूरब की ओर छिड़कना, उसके बाद सामने, सामने कैसे, ऐसे। ये सामना हुआ पूरब की ओर, जिधर दरवाजा है, दरवाजा पूरब की ओर है। ठीक है, तो ये बातें समझनी आसान बात नहीं है, ये बड़ी खास बातें हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, इनमें आत्मिक मतलब है। तो एक एक करके अब हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले 11 और 12 पढ़ेंगे अब। हाँ जी, 11 और 12, 16 का 11 और 12।
हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो इसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित रूप से भरकर
धूप से सुगंधित रूप से
सुगंधित रूप से धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर।
तो देखो ये बलिदान सबसे पहले आंगन में बैल को आंगन में मारता है और उसको उसका लहू लेता है और ये तीन चीजें लहू कोयले जलते हुए कोयले और सुगंधित वस्तु दोनों मुट्ठियों में भर के पवित्र स्थान में एंटर होता है। अब पवित्र स्थान में जाके क्या करता है पढ़ लो 13 में 13 में। हाँ जी इसी से 13
उस धूप को योगा के सम्मुख आग में डालें जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्ती ऊपर ये प्राश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए नहीं तो वह मर जाएगा।
तो दूसरा काम क्या करता है अंदर आके फिर वो जलते हुए हुए कोयलों जो वो सोने की वेदी है उस पर डालता है और कोयले डालने के बाद वो मीठी सुगंध वाली वस्तु डालता है जिससे खुशबू और धुआं फैल जाता है जो अति पवित्र स्थान में चला जाता है और धुआं जो पूरा सिंहासन को दया के सिंहासन को कवर कर लेता है और अंत में अंदर जाके फिर जो आरुण होता है मुख्य याचक अंदर जाके अति पवित्र स्थान में लहू के साथ अंदर जाता है और लहू के साथ अंदर जाने के बाद क्या करता है पढ़ लो 16-14।
तब वे बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्राचीर के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के।
तो ऐसे और ऐसे तो हारून ये अति पवित्र स्थान में खून के साथ जाता है और 7 बार लहू को छिड़काता है और क्या बनाता है ये देखो ये हारून है खड़ा ये हारून है और यहाँ प्राश्चित का ढकना है पहले अपनी पूर्व की ओर ठीक है उसके बाद सामने तो ये है सामने ऐसे ठीक है। तो ये क्रॉस बनाता है अंदर जाके लहू को छिड़काता है तब जाके ये जो बलिदान है ये पूरा होता है ठीक है। तो इसके बाद बकरे का बलिदान होता है लेकिन उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन पहले ये बलिदान का मतलब हम समझ ले क्या है। सबसे पहली बात बैलों और बछड़ों और बकरों के बलिदान से पाप क्षमा नहीं होते ये पढ़ लो इब्रानियां 10:1-4।
क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अशुभ चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते।
देखो
उसी तो इच्छा से हम यीशु मसीह की
एक और चार बीच में 2 और 3 रहने वो
अच्छा 4 पढ़ेंगे क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैल और बकरों के लहू से किसी के पाप क्षमा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता असंभव है ये। अभी इसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा ना फिर परमेश्वर का वचन ही खुद ही बोल रहा है परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे घर से बकरे बछड़े नहीं लूंगा और दूसरी बात बोल रहा है पाप नहीं माफ होते हैं तो फिर इसका कुछ ना कुछ आत्मिक महत्व होना चाहिए है ना। कुछ ना कुछ आज के जो ईसाई सुषमाचार युग के ईसाई उसके लिए कोई ना कोई गहरी बात और गहरा पाठ है यहाँ सीखने के लिए। बैल और बकरे पाप साफ नहीं कर सकते। अभी ये क्या था ये आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या था
प्रतिबिंब।
अभी आने वाली अच्छी वस्तुओं की थी वही परमेश्वर की योजना परमेश्वर की योजना में क्या थी? उदारता की योजना, जो हमें धीरे 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 हमें साफ होते जा रही है कि परमेश्वर की योजना उसके इकलौते पुत्र के इर्द गिर्द घूमती है। इकलौते पुत्र के द्वारा उसने बलिदान दिया छुड़ौती का, जिससे छुटकारा हुआ सारी मनुष्य जाति का। तो ये जो व्यवस्था थी, व्यवस्था यानी जो पुराने नियम में इजरायली शारीरिक रूप में करते थे, उनका कुछ ना कुछ असलियत है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल मतलब रिश्ता है जिसका, मतलब वो शारीरिक रूप में करते थे लेकिन उसका जो वो सिर्फ नमूना था, उसकी असलियत जो पूरी होती है वो प्रभु यीशु मसीह में होती है। तो इसमें क्या है ये आज हम देखेंगे कि ये जो बैल के बलिदान में क्या है। उससे पहले वचन पढ़ेंगे रोमिया 15:4 कि जो कुछ भी पुराने नियम में हुआ वो हमारे सीखने के लिए। तो इसमें हमारे सीखने के लिए क्या है?
रोमिया 15:4
कितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं।
देखो, हमारी ही शिक्षा के लिए, जो भी बातें पुराने नियम में हैं हमारी यानी कलीसिया की शिक्षा के लिए है, क्रिश्चियंस की शिक्षा के लिए है। बस तो अब इस प्राश्चित के दिन में हम देखते हैं कि इजरायलियों के पाप माफ होते थे। तो ये एक नमूना था परमेश्वर दिखा रहा इजरायली के जरिए, जो असलियत होने वाली थी आने वाले समय में। एक बहुत बड़ा प्राश्चित मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, आदम की संतान और परमेश्वर के बीच में। एक्चुअल में जो इंग्लिश वर्ड है वो है अटोनमेंट। अटोनमेंट को तीन जब शब्दों में हम बांटते हैं, एट वन मेंट मतलब एक ही बार परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच समझौता, ठीक है। तो इसको प्राश्चित बोला और एक ही बार होता है ये। अभी ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम देख लेंगे। इब्रानियों 9:23 पढ़ते हैं।
इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में इन वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं।
स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप, स्वर्गीय वस्तुओं का प्रतिरूप और इन बलिदानों से क्या किए जाएं?
शुद्ध किए जाएं।
आगे,
पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती।
हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं के ये बलिदान जो है ये बैल बकरों का नहीं बल्कि उत्तम बलिदानों से वो होते हैं। अभी ये उत्तम बलिदान क्या है तो चलो अब देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये तो एक प्रतिरूप था, एक प्रतिबिंब था, एक नमूना था, लेकिन अब असलियत देखते हैं। सबसे पहले ये जो बुलक है, जो बैल था जिसका बलिदान होता था, जो बैल जिसका बलिदान होता था, वो किसकी तस्वीर है? वो कौन है जो जिसने प्राश्चित किया, जिसका बलिदान हुआ ताकि उसके और उसके परिवार के पाप
क्षमा हो जाए?
तो ये कौन है, ये बुलक, ये बैल? हाँ, तो ये किसका मतलब असलियत में कौन है ये? हाँ जी बोलो बोलो, बिल्कुल सही है। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। पहला तिमोथियस 2:5-6। तो अभी ये जो बैल है, बैल ना, ये बैल का मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं है। बैल का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, ठीक है, बहुत बड़ा बलिदान,
बैल का मतलब है ना।
हाँ,
दूसरा तिमोथियस,
एग्जाम्पल है
पहला तिमोथियस 2:5-6।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य।
तो ये है अटोनमेंट, एट वन मेंट, एक बलिदान जिसके द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, तो उसने इस पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए एक ही बार सलीब पे चढ़ के प्रायश्चित कर दिया। तो जो इज़राइल में होता था वो तस्वीर थी पूरी मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए। ठीक है, इब्रानिया 9:26 पढ़ लो साफ साफ, इब्रानिया 9:26
नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ा, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि ताकि अपने अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे,
पाप को
दूर कर दे
एक ही बार। प्रभु यीशु मसीह बार बार सलीब पे नहीं चढ़ेगा, एक ही बार चढ़ा और उसने उसको पूरा कर दिया। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह है वो बैल की तस्वीर, बैल के बलिदान की तस्वीर, अब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि कौन मारता है, याचक, और याचक भी कौन है, प्रभु यीशु मसीह ही है। देखते हैं अभी। तो सबसे पहले ये जो बैल, बैल कई लोग हैरान भी हो जाते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह को बैल बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, नहीं, प्रभु यीशु मसीह बैल
बलिदान को बोला जा रहा है, जो प्रभु यीशु ने बलिदान
नहीं वो भी ठीक है, बलिदान दिया था हमारे प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन बलिदान क्या दिया था, ये तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की। अभी बलिदान क्या दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया था, बलिदान दिया था उसने संपूर्ण मनुष्यत्व, संपूर्ण मनुष्यत्व, जिसमें ना पाप था ना कोई कमी थी। प्रभु यीशु मसीह पे मृत्यु नहीं आ सकती थी, क्यों, क्योंकि उसमें पाप नहीं था, वो संपूर्ण था। तो ये जो संपूर्ण मनुष्य है ना, ये है बैल, इसको बोलते हैं बैल, संपूर्ण मनुष्य। ठीक है, ये था जिसका बलिदान दिया किसने, प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया इसका, किसका, अपने संपूर्ण मनुष्यत्व का। तो बैल का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व,
या बोल सकते हैं संपूर्ण इच्छा की है, ऐसे बोल सकते हैं,
नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। संपूर्ण इच्छा नहीं, संपूर्ण मनुष्यत्व। ठीक है, तो ये है पहली नमूने का पहला असलियत। उसके बाद ये कौन करता था, हारून। अभी हारून किसकी तस्वीर है, हारून होता था मुख्य याचक, सही ना, हारून किसकी तस्वीर है, ये पढ़ लो बात, इब्रानियों 5:5-6
वैसे ही मसीह ने भी महायाचक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं की।
देखो, महायाचक अपने आप से नहीं, किसने किया है इसको स्थापित,
उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था तू मेरा मित्र है,
तू मेरा नहीं मित्र नहीं सिस्टर, पुत्र,
तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। आज मैं
तो ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ने उत्पन्न किया प्रभु यीशु मसीह को, और परमेश्वर ने स्थापित किया उसको महायाचक।
इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिक सिदिक की पूरी इज्जत सदा के लिए याचक है।
तो हारून जो है, हारून जो शारीरिक रूप में इज़राइल में महायाचक की तस्वीर थी, महायाचक था, असलियत में महायाचक कौन है स्वर्ग में? प्रभु यीशु मसीह। वो है असली महायाचक जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया है, खड़ा किया है अपने इकलौते पुत्र को। अब आप सोच रहे होंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह को मार सकता है। प्रभु यीशु मसीह को कैसे मार सकता है? हम बोल रहे हैं महायाचक भी प्रभु यीशु मसीह है, और हम बोल रहे हैं जो बैल है वो उसका संपूर्ण मनुष्य, तब वो कैसे मार सकता है? कैसे? इसलिए मार सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से ये बलिदान देने का फैसला किया, अपनी इच्छा से बोला कि ये मैं संपूर्ण मनुष्यत्व संसार के पापों के लिए खत्म करूंगा, मारूंगा। तो ये है मारने का मतलब, हारून जो उस बैल को मारता है। तो ये हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की वाचा बांधी 30 साल की उम्र जो होती है ना, 30 साल की उम्र में बोलते मनुष्य जो है ना वो पूरी तरह से समझदार हो जाता है, इसलिए 30 साल की उम्र संपूर्णता की उम्र रखी हुई है। तो जो जब 1000 साल के राज्य में भी आएंगे तो हर मनुष्य और हर इंसान जो है वो 30 साल की डेट पे बस स्थापित रहेगा, 30 साल में संपूर्ण हो। इसलिए ये इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा 15 साल की उम्र में भी हो सकता था, 30 साल इसीलिए हुआ कि वो संपूर्णता की उम्र दर्शाती है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम क्या देखते हैं? अच्छा, ये आंगन में इसका बलिदान हुआ बैल का, प्रभु यीशु मसीह का ये दर्शाता है बपतिस्मा, संपूर्ण और पाप रहित मनुष्यत्व जिसको बलिदान किया। अब बलिदान करने के बाद हारून क्या लेता है? सुगंधित वस्तु जिससे स्मेल आनी है। सुगंधित वस्तु का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं वचन में, 12 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक ज्ञान में बढ़ता गया, सद्भाव में बढ़ता गया। जब आया वाचा बांधने तो सद्भाव इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, क्या बात। ठीक है, पढ़ लो लूका 2:52। जी 2:52।
और यीशु बुद्धि और दिल दौलत में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।
तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 से 30 साल तक जो कैरेक्टर डेवलप किया, जो सुगंधित स्वभाव अपने में लेके आए, तो ये था मीठी सुगंध थी ये। ठीक है, जो जैसे आप बोलो धूप बोल लो। उसके बाद हाथ भर के, दोनों मुट्ठियों में हाथ भर के ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? जितनी उसमें कैपेसिटी थी, जितना मेरे में शक्ति थी, जितना मेरे में सामर्थ है, उससे पूरा छोड़ा नहीं, बिल्कुल पूरा हाथ भर के। और तीसरी जो चीज थी, क्या लेने हैं? कोयले, जलते हुए कोयले। जलते हुए कोयले का क्या मतलब? कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सत्य बोलना शुरू किया, सत्य की बातें शुरू की, तो प्रभु यीशु मसीह का विरोध और उसके दुश्मन और उस पे जो प्रभाव प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने लिए किया। क्यों? क्योंकि वो सत्य की बातें बोलता था। चाहता तो वो भी याचकों के साथ या फरीसियों के साथ मिल सकता था। हाँ हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो, कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जिसकी वजह से वो उसके क्या बन गए? तो ये थे आग के कोयले, आग के कोयले थे ये जो विरोध और ये जो दुश्मन प्रभु यीशु मसीह के हुए सत्य पे चलने से। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये खुद लिए, मतलब उनकी इच्छा से। उसके बाद चौथी चीज क्या होती है, लहू, लहू होना है, बैल का लहू। तो ये लहू क्या है, पहली बात तो पढ़ लो, लेवे व्यवस्था 17:11 में लहू में होता है जीवन,
क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है।
देखो तो शरीर का प्राण किसमें है, लहू में। तो लहू है जिसमें जीवन है, तो ये चिन्ह है जीवन का, लहू चिन्ह किसका है, जीवन का। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो जो मनुष्य जीवन था वाचा बांधने के बाद उसको बलिदान कर दिया परमेश्वर की इच्छा के लिए। ठीक है, और लहू के साथ कहाँ दाखिल होता है, पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान का मतलब क्या है, जो वाचा बांधने के बाद जीवन शुरू होता है। असली मसीही जीवन जो है वो वाचा बांधने के बाद शुरू होता है। उसमें क्या है, उसमें हर रोज आपको बलिदान देना है। आप अति पवित्र स्थान में दाखिल होना है किसके साथ, लहू के साथ। लहू का मतलब क्या है, बलिदान। कोयले के साथ आपके विरोधी होने चाहिए, और सुगंधित धूप के साथ आपका कैरेक्टर। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो चलो अब पीछे पीछे चलते हैं। हारून पवित्र स्थान में जाता है। सबसे पहले हारून जब पवित्र स्थान में जाता है तो क्या करता है, कोयले डालता है किसमें, वेदी में, और उस पर डालता है सुगंधित वस्तु। तो इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का वाचा बांधने के बाद कितने समय जीवित रहे प्रभु यीशु मसीह, 3.5 साल। 30 साल की उम्र में वाचा बांधी और 3.5 साल का मिनिस्ट्री। तो 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती, बुरे बुरे शब्द, विरोधता सब हुई, फरीसी सदूसी और जो व्यवस्था पढ़ाने वाले, और यहां तक के जो उसके पीछे आते भी थे ना वो भी उसको बुरा भला बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह को नाश करने का कई बार चांसेस भी हुए, जब वचन बोला यशाया वाला तो उसको ले गए पहाड़ी पे गिराने के लिए, लेकिन वो उसका समय नहीं था तब। ठीक है, तो ये थे कोयले और सुगंधित वस्तु। इस सुगंधित वस्तु का क्या, इतने विरोध के बावजूद, इतने बुराई के बावजूद, बेइज्जती के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने कभी धैर्य नहीं खोया, कभी पाप नहीं किया, कभी बदला नहीं दिया। ये था उनका कैरेक्टर, संभाव। तो ये है धूप, कि जितना मर्जी विरोध हुआ लेकिन उनके संभाव पे कोई असर नहीं हुआ, उनका स्वभाव और शांत होता गया, और शांत होता गया, कभी नहीं घबराए। तो ये है कोयले पे सुगंधित वस्तु का जलना। ठीक है, अब ये जो धुआं, जब सुगंधित वस्तु कोयले पे डलती तो क्या होता है, धुआं प्रकट होता है, और धुआं प्रकट होके क्या करता है, अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित के ढकने को कवर करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी जीवन बिताया, अपने इतने सुंदर गुणों वाला स्वभाव इस विरोध में प्रकट किया, इसकी महक पता कहां पहुंची, स्वर्ग तक। पिता को बड़ी खुशी हुई। क्या बोला यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला उधर खड़ा था, उसको क्या बोला, ये मेरा इकलौता पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश हूं। इससे मैं क्यों खुश था प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी परमेश्वर के प्रति, वाचा के प्रति और अपने मकसद के प्रति, इससे परमेश्वर बड़े आनंदित थे। अफिसियों 5:2 पढ़ लो।
और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेज करके।
तो ये सुखदायक सुगंधित है परमेश्वर के आगे सामने, इसका मतलब आपका स्वभाव परमेश्वर को दिखना चाहिए और परमेश्वर बोल के बैठ के बोलना चाहिए, वाह क्या क्या बंदा है यार। तो ये है स्वभाव। और ये जो धुआं है, धुआं ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव का जो नमूना था, ये प्रकट हो रहा था आग से 3.5 साल पूरा प्रकट होता रहा। और इसने प्रायश्चित के ढकने को कवर किया। प्रायश्चित के ढकने को कवर करने का क्या मतलब है कि प्रायश्चित के ढकने के सामने जाना है, सबसे पहले न्याय होना चाहिए क्योंकि वो न्याय का सिंहासन है। और न्याय क्या था? जीवन के बदले जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और मतलब कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस संपूर्ण मनुष्यत्व को संभाल के तो रखा ही रखा, यानी पाप नहीं किया, बल्कि उसको संपूर्ण और जिससे परमेश्वर स्वीकार करे उसको बलिदान भी किया। तो ये था उसको ढकना, प्रायश्चित के सिंहासन को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिंपल शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण तरीके से व्यवस्था को पूरा किया। जो 10 हुक्म थे मूसा के, वो एक ही बंदे ने पूरे किए और वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई कर नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मतलब व्यवस्था को पूरी तरह से पूरा किया। अब जो हारून है, अति पवित्र स्थान में सिर्फ एक ही चीज लेके जाता है, क्या क्या लेके जाता है? लहू, सिर्फ लहू। तो वो भी उसको नीचे से रेन के जाना है, नीचे से पर्दे के, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कब हुआ? 3 दिन के बाद जी उठे। अभी आपको पता अति पवित्र स्थान की तस्वीर, अति पवित्र स्थान का क्या मतलब है? अति पवित्र स्थान
जो जिसके अंदर सिर्फ एक याजक ही जा सकता था।
हाँ, वो नमूना है। हाँ। अति पवित्र स्थान नमूना, उसकी असलियत क्या है?
परमेश्वर की प्रेजेंट हजूरी वहां पर, और क्या?
नहीं, वो ठीक है, वो हजूरी है। अति पवित्र स्थान का मतलब है स्वर्ग, जहाँ परमेश्वर बैठते हैं, ठीक है। आप बोल सही रहे हो लेकिन वहां पहुंच नहीं रहे, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में एंट्री कब की? 43 दिन के बाद, बलिदान के 43 दिन के बाद। तो जो नीचे से रेंग के जाना प्रायश्चित के सिंहासन के सामने, इसका मतलब यही है 43 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अब वहां पे स्वर्ग में मांस और लहू से नहीं जा सकते, शरीर से नहीं जा सकते, आत्मिक शरीर में गए और वहां जाके बलिदान को क्या किया? पूरा किया, ठीक है। तो वो जो लहू, जो सलीब, अभी सलीब जो है, सलीब जो बनाई, इसका मतलब है बलिदान। बलिदान इसका मतलब और कुछ नहीं, बलिदान। अब ये 7 बार क्यों थी वो अलग बात है, वो बताऊंगा। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में दाखिल हुए। और इब्रानियां 9:24 पढ़ लो।
क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, स्वर्ग ही में प्रवेश किया।
तो स्वर्ग में बलिदान पूरा करने के बाद स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद क्या करता है? लहू लेता है और परमेश्वर के सामने क्या बनाता है?
क्रॉस
बनाता है। सात बार, ठीक है, लहू छिड़काता है, तो इसका मतलब न्याय को पूरा करता है, वो जीवन जीवन देता है, ठीक है, अपना जीवन बलिदान करता है, सॉरी, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? अपने और अपने परिवार के लिए। ये बलिदान बाकियों के लिए नहीं है, ये बलिदान सिर्फ अपने और अपने परिवार,
मतलब अपने लिए और कलीसिया के लिए, ये हो गया ना अपने अपने परिवार का मतलब।
यस, तो हारून अभी ये लहू जो है बैल का, जो प्रभु यीशु मसीह जो महायाचक है असली रीति से, अपने और अपने परिवार। अभी प्रभु यीशु मसीह तो पापी नहीं थे, उनका तो कोई पाप नहीं था, उन पे तो कोई दाग भी नहीं था। अभी ये अपने लिए का क्या मतलब है? अपने लिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। अभी ये प्रभु यीशु मसीह तो पापी नहीं थे, उनको तो बलिदान मतलब उनमें तो पाप नहीं था, तो प्रायश्चित की वो जरूरत भी नहीं थी, तो फिर किस कौन है अपने लिए बोला? तो पहला कुरिन्थियों 12 का 12 पढ़ लो। हाँ, 12 का 12।
क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब बहुत अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी एक है।
तो मतलब क्या है? कलीसिया है वो शरीर। अभी कलीसिया वाले तो पापी है ना, तो इनको प्रायश्चित की क्या है जरूरत है, इसलिए बोला अपने लिए। मैंने आपको इसलिए पहले भी बोला था, प्रभु यीशु मसीह का है हेड और बॉडी। हेड कौन है? यीशु। और बॉडी कौन है? कलीसिया। तब जाके बनता है यीशु मसीह। हाँ, तो अपने लिए तो प्रभु यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी, लेकिन कलीसिया के लिए जरूरत थी, इसीलिए बोला अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अभी ये परिवार कौन है? हाँ जी, नहीं, अपने लिए हो गया कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह। अपने परिवार के लिए कौन है?
बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना।
अपने परिवार के लिए है वो जो सारे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यानी ये सारे नामी क्रिश्चियन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास, ये है उसका परिवार। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे उनको सत्य पता है या नहीं पता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उनके पाप तो क्षमा हो जाते हैं,
बचाए तो जाएंगे।
ऐसा मत बोलो बचाए, सारी मनुष्य जाति हुई है, बचाई सारी मनुष्य जाति, नहीं बचाई, नहीं संसार का उद्धार किया,
तो वादा किया हुआ फिर भी आगे भी किया हुआ।
हाँ, तो बचाना शब्द अभी ये छोड़ दीजिए, गजर आप बहुत 32 क्लास पे पहुंच गए हो। बचाना शब्द का मतलब क्या है? मृत्यु से बचा लिया। किनको? पूरी मनुष्य जाति को। अभी उद्धारता के दो पक्ष हैं, एक तो स्वर्गीय उदारता है, एक तो धरती की उदारता है। अभी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बचाए जाएंगे, उनको बचा लिया, मृत्यु से बचा लिया, लेकिन उनको धरती की उदारता मिलेगी, उनको स्वर्ग की उदारता नहीं मिलेगी। तो ये है बात। तो ये बचाना शब्द बड़ा गलत शब्द है, बचाना शब्द हमें इस्तेमाल ही नहीं। एक्चुअली हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सारी मनुष्य जाति के लिए क्या दे दिया? नहीं दिया,
दिया
ना, ठीक है, तो बचा लिया सारी मनुष्य जाति को, नहीं बचाया, बचा लिया, ठीक है। तो लेकिन अभी ये जो नामी ईसाई है, जो उसका परिवार है, जैसे आंगन में खड़े होने वाले, सारे आंगन में खड़े होने वाले पवित्र स्थान में दाखिल नहीं होते, लेकिन वो कहाँ है? तंबू में जरूर है, अंदर जरूर है, लेकिन दूसरे कदम, चुने हुए नहीं हो सकते, सिर्फ याचक लोग ही जो चुने जाते हैं याचिकाई के लिए, वही अंदर जाएंगे। तो इसी तरीके से ये ईसाई जो विश्वास करते हैं, ठीक है, इनको ये आंगन में है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, दरवाजे से एंटर हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी वो क्या है? बलिदान है उनके लिए भी, क्या है? इसीलिए बोला अपने लिए। अपना बड़ा खास है, अपना है वो और उसकी कलीसिया, और ये बिना सत्य वाला एक भी उस 144,000 में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है अपना है कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह, और अपना परिवार कौन है, वो सारे चुने हुए और बुलाए हुए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इनको वो अपना परिवार बोलता है। क्यों? क्योंकि उस पे विश्वास के द्वारा उनको मिलती है पापों की क्षमा। प्रेरितों के काम 10:43।
उनकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको अपने नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
देखो, तो उसके नाम के द्वारा उनको उनके पापों की क्षमा मिलेगी। तो ये है अपना और अपना परिवार, समझ में आ गया। अब अगली बात जो अंतिम चीज है बलिदान पूरा करने के लिए, क्या बनाना है? क्रॉस बनाना है 7 बार, है ना। तो एक क्रॉस बनानी है। ठीक है, अभी क्रॉस भी कैसे बननी है, 1 बार पूरब की तरफ है और 7 बार सामने है। तो मतलब एक ही बलिदान है लेकिन उसके 7 हिस्सों में, या 7 बार जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्वर्ग में जाने वाली है ग्रुप है, यानी जो अति पवित्र स्थान में, जो पवित्र स्थान में आते हैं, यानी पवित्र स्थान का मतलब जो वाचा बांधने का फैसला करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने का फैसला करते हैं, जो क्रूस उठाने का फैसला करते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो एक बंदे ने सलीब उठाई। ठीक है, उसका मतलब है, उसका मतलब क्या है, वो दर्शाता है कलीसिया, कलीसिया को भी ऐसी सलीब उठानी है, लेकिन लकड़ी की नहीं, लकड़ी की नहीं, ये सलीब है जीवन के बलिदान की। जैसा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया, क्या आप दे सकते हो? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चल सकते हो, उसका पीछा कर सकते हो, बलिदान वाला जीवन जी सकते हो, अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के लिए बलिदान कर सकते हो? ये है प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना। ये संसारिक वो जो सोच समझ या संसारिक आपके जो सपने या इच्छाएं या मंजिलें, उनको बलिदान कर सकते हो। तो जो ऐसा करते हैं वो बनते हैं प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाले। प्रभु यीशु मसीह भी चाहते तो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते जाते थे, उनका बाप मर गया था, बाकी परिवार की जिम्मेदारी थी ना सारी, सोचते चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा टाइम करके जब मैं ये सेटल हो जाएंगे फिर मैं करूँगा, ऐसे कर सकते थे लेकिन नहीं किया ना। तो ऐसा ही हमें भी करना है, लेकिन चलो परमेश्वर की हम पे बड़ी कृपा है, बोला कि अपने परिवार के लिए करना है, वो भी जिम्मेदारी है, सब करना है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ये 7 बार छिड़काने का मतलब क्या है, कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के 7 हिस्से हैं, 7 बंटवारे हैं, जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में देखने को मिलते हैं, 7 कलीसियाओं के नाम। अभी इन सबको बलिदान होना है, चाहे पहली कलीसिया हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथी हो। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया तो एक है लेकिन सुषमाचार युग में समय सबके अलग अलग है,
भाग हो अलग अलग।
हाँ, कैसे
मतलब उनको जैसे 7 टुकड़े बना दिए ना परमेश्वर।
हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिशने नहीं, इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रेरितों के टाइम से लेके कुछ समय तक एक कलीसिया थी, वो पूरी हो गई, उसके बाद दूसरी, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी, पैरेलल नहीं चलेंगी कि सातों की सातों एक साथ ही चलेंगी, समय है वो 45वीं क्लास में आपको पता चल जाएगा कौन से कब तक पहली थी, कब से कब तक दूसरी थी, कब से कब तक तीसरी थी, ठीक है। तो ये सात बार करने का मतलब क्या है कि मेरे बलिदान के सात हिस्से हैं, मेरा बलिदान सात बार पूरा होगा, मतलब क्या समझ रहे हैं, सात बार क्यों, क्योंकि मैं तो बलिदान कर रहा है, अभी मेरे पीछे भी बलिदान कर रहे हैं मेरे द्वारा, पीछे मेरी कलीसिया के बलिदान कर रहे हैं, मतलब मेरे पीछे पीछे पहली कलीसिया का बलिदान आ रहा है, दूसरी का आएगा, तीसरी का आएगा, चौथी का आएगा, सातवीं जब पूरी हो जाएगी उस दिन बलिदान क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये है सात बार करने का मतलब। मैंने बोला ना आपको कि परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर के कामों में बिना कोई महत्व के कोई काम नहीं होता। अभी वो लहू एक बार भी छिड़काया जा सकता था ना, लेकिन ये सात बार छिड़काया इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सात हिस्से हैं, एक एक करके आता जाएगा, बलिदान पूरा होता जाएगा, ठीक है। तो ये है पहले बलिदान का मतलब, ये है पहला जो बलिदान प्रायश्चित के दिन में होता है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरा बलिदान, समझ आ गया, इसमें कोई प्रश्न कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बलिदान बकरों का, और बकरों के बलिदान के बारे में हमने क्या पढ़ा कि दोनों को पवित्र स्थान में लेके आता है, और पवित्र स्थान के दरवाजे के सामने लेके आता है, अंदर नहीं सामने लेके आता है, और उन पे पर्ची डालता है, एक पे जिस पे पर्ची गिरती है वो बलिदान होता है, और दूसरे को उजाड़ में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये किन के लिए होता है, ये होता है बाकी पूरे इसराइल के लिए,
बकरों का बलिदान।
तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे बाकी संसार के लिए। पहला बलिदान था प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया और उस पर विश्वास करने वालों पे, चुने हुए और विश्वासी, सब सब तीनों तीनों कैटेगरी आ गई। उसके बाद अभी संसार के लिए बलिदान। अब इसका इस सारे का क्या मतलब है, इसको भी सेम तरीका है, मारना है बाहर, लेकिन वो इसराइलियों के लिए था, इसराइली, अभी इसराइल की तस्वीर का मतलब है संसार, वो संसार के लिए था, ठीक है। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में जो बसे हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बलिदान होता है, उसको मारता है, कोयले लेता है, लहू लेता है, लेकिन फर्क सिर्फ एक ही है, यहाँ पे क्रॉस सात बार नहीं बनती, सिर्फ एक ही बार बनती है, दूसरे बलिदान में अंतर सिर्फ ये है। हाँ पढ़ लो लेवी व्यवस्था 16 का 15-16,
लेवी व्यवस्था
16 का 15 और 16।
फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें।
तो देखो यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ पे सात बार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद एक और बलिदान है जो प्रभु यीशु मसीह के बाद ही होना, उसके द्वारा होना है। अभी ये क्या है, ये बलिदान है आज के ईसाइयों के लिए खुला। अब जब मैं ईसाई बोलता हूँ तो ईसाइयों में अंतर है, एक तो सच्चे ईसाई हैं, एक तो नाम के ईसाई हैं। तो ये सच्चे ईसाइयों के लिए एक सुंदर अवसर है बलिदान का। अभी कई ईसाइयों को ये बड़ा हैरानी की बात लगती है, बड़े झटका लग जाता है कि ये कैसा बलिदान है? हमें तो सिखाया जाता है कि परमेश्वर सिर्फ बोलता है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और जितने भी अविश्वासी उनको ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाओ, उनको विश्वासी बनाओ और तुम्हारी सीट रिजर्व है स्वर्ग में। तो क्या ऐसा है? नहीं, ये परमेश्वर की योजना। परमेश्वर चाहे तो पूरे संसार को ऐसे बदल सकता है, ऐसे चाहे तो ऐसे बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा करता नहीं है। कितना समय हो गया? 6000 साल से ऊपर हो गया पाप को झेलते हुए। परमेश्वर को चाहता तो रोक सकता था ना। परमेश्वर के कामों में जल्दबाजी नहीं होती है। परमेश्वर हर एक काम बड़े अच्छे तरीके से करता है जिससे नतीजा बढ़िया निकले, जिससे जो सिखाने वाला पाठ है वो पूरी तरह सीख लिया जाए। जोर जबरदस्ती वाला काम परमेश्वर नहीं करता, जल्दबाजी वाला काम परमेश्वर नहीं करता। तो अभी जब ये बात ईसाइयों को पता चलती है कि हम तो विश्वास दिखाते हैं, अभी ये बलिदान की क्या बात है, तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। ऐसे ही वो अमीर भी हुआ ना, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोला अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे, तो वो निराश होकर मुड़ गया। लेकिन अगर वो वहां पूछता प्रभु यीशु मसीह इसका मतलब क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको बताते इसका मतलब क्या है। लेकिन उसने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपना घर बार बेच और मेरे पीछे, वो इतना सोच समझ अपने दिमाग से लड़ाया और वापस मुड़ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये नहीं था। प्रभु यीशु मसीह साधारण रूप में वहां बात नहीं कर रहे थे, उन्हें बेचने का कुछ और मतलब था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी पता था अगर ये अपना घर बार अपनी संपत्ति बेच देगा, गरीबों में बांट देगा, तो गरीब तो अमीर नहीं होने वाले। गरीब 10 दिन खा लेंगे, 15 दिन खा लेंगे, 1 महीना खा लेगा, 2 महीने खा लेंगे, बाद में फिर गरीब हो जाएंगे। उनके साथ अब एक और गरीब जुड़ जाएगा जिसने ये बेचा। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब
क्या है?
वो बताएंगे ब्रदर, वो अलग अलग चीज है वो, ठीक है। तो एक विश्वासी को, जो अपने आप को विश्वासी बोलता है, उसके पास अवसर है प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलने के लिए। पढ़ लो 1 पत्रस 2:21। एक विश्वासी को उसका पीछा करने वाला बनना है।
1 पत्रस 2:21।
हाँ,
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे रहा है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
तो ये देखो, ये पद चिन्हों पर चलना है प्रभु यीशु मसीह के। तो बुलावा इसलिए मिलता है, विश्वासी को आमतौर पे विश्वासी को पीछा करने वाला बनना है प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर, बट ऐसा होता नहीं है। फिलिपियां 1:29 भी देख लो।
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ
है
कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ।
तो ये देखो, दुख भी उठाओ। तो अभी ये विश्वासी तो सीन से निकल गए, अब रह गए कौन? जो पीछा करने वाले। अभी पीछा करने वालों में से बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है। तो ये चुने हुए वो हैं जो क्या हैं? जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने का फैसला करते हैं। अभी इसमें से भी दो ग्रुप होने वाले हैं। अभी चुने हुए में से दो ग्रुप हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो चुने हुए रह जाएंगे, एक तो बुलाए हुए छोड़ दिए, वो पहली स्टेज है। अब चुने हुए हैं। चुने हुए कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं। अभी चुने हुए में से दो ग्रुप बटने हैं। कौन कौन से?
एक तो कलीसिया चुन जाएगी
और दूसरी बड़ी भीड़।
बड़ी भीड़
कलीसिया वफादार, बड़ी भीड़ वफादार नहीं। इनाम खो दिया, सिंहासन नहीं मिला, 1,44,000 में एंट्री नहीं हुई, ठीक है, स्वर्गीय उदारता दोनों की। तो ये है वो दो बकरे। एक तो कलीसिया और दूसरी बड़ी भीड़। कलीसिया का बलिदान स्वीकार हो जाएगा, बड़ी भीड़ को उजाड़ में छोड़ा जाएगा। उजाड़ का क्या मतलब है? कलेश, कलेश का समय। तो ये पढ़ लेंगे। तो इसलिए जो जो ईसाई ये फैसला करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और चलते चलते वफादारी साबित करके बलिदान वाला जीवन दिखाते हैं, जीवन बिताते हैं, वो बन जाता है बकरों, दो बकरे, ठीक है। जो जी पढ़ लो रोमिया 12 का एक, पौलुस बोल रहा है।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुमन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके जाओ।
तो देखो, परमेश्वर को भावने का मतलब है स्वर्ग में वो सुगंध पहुंचनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के कदमों के पीछे चलते हुए एक वाचा बांधा हुआ जीवन, बलिदान वाला जीवन व्यतीत करना है। अभी ये है वो दो बकरे, चुने हुए, चुने हुए हैं तस्वीर वो दो बकरों की, ठीक है। अब क्या है? अब क्या है, इन पे चिट्ठी डाली जाती है। चिट्ठी डालने का मतलब पर्ची। पर्ची का मतलब क्या है? मतलब पूरी तरह इम्पार्शियलिटी, मतलब उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है कि ओहो ब्रदर जेपी शर्मा में बड़े टैलेंट है इसलिए मैं इनको चुन रहा हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इम्पार्शियलिटी है जो जिसमें भी उत्साह हो, जिसमें भी वफादारी दिखाने का इच्छा हो, वाई वाचा बांधे। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, अरे ये इसमें ये गुण है इसलिए ये, नहीं नहीं नहीं, वाचा बांधनी है प्रभु की कृपा से, जिसकी परमेश्वर की इच्छा होगी तो बजेगी, ठीक है। और उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये इसीलिए बोला पर्ची डालता है। जिस पे पर्ची गिरी वो प्रभु का बकरा और एक उजाड़ में छोड़े जाने वाला। तो मतलब चुने हुओं की स्थिति में जो उत्साह रखने वाले, वो बाद की बात है, उत्साह बाद में कम हो जाता है, सत्य पे चलते चलते थक जाते हैं लोग, बुरे हाल हो जाते हैं, लेकिन शुरू में जब आते हैं प्रभु, तो उसमें से जो वफादार होंगे वो है प्रभु का बकरा, और जो नहीं वफादार होंगे वो है कौन है, वो बड़ी भीड़, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे, पहले बलिदान में भी कलीसियाओं का बलिदान है, दूसरे में भी आप बोल रहे कलीसिया का बलिदान है। नहीं, पहला बलिदान जो था बैल का, वो बलिदान था, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का हिस्सा था। लेकिन हर एक वाचा बांधा हुआ संत को अपनी वफादारी साबित करनी है, अपना जीवन देना है, ठीक है, अपने तौर पे प्रभु यीशु मसीह के जरिए वो कुर्बानी वाला जीवन जी के परमेश्वर को प्रसन्न करना है, वफादारी साबित करनी है, ठीक है। तो ये हारून, अभी इसको भी कौन मारता है? हारून। अभी हारून कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अपने शरीर के अंग में जो भी वाचा बांधता है उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करने का मतलब है उसको मौत का तजुर्बा देता है। इसीलिए जब बपतिस्मा दिया जाता है तो पीछे को फेंका जाता है। पीछे को इसलिए फेंका जाता है क्योंकि आप मर गए। तो प्रभु यीशु मसीह के जब शरीर के अंग हम बनते हैं तो फिर हमें मिलता है मौत का तजुर्बा। मौत, अभी शारीरिक मौत तो चलो हमें बाद में आती है, लेकिन रोज का मरना, मौत का तजुर्बा मिलता है। और फिर हम पीते हैं किसमें से? एक ही प्याले से, और वो कौन सा प्याला है? मृत्यु का प्याला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना प्रेरितों को, जो मैं प्याला पीने जा रहा हूँ तुम पियोगे? बोलते हाँ हम पियेंगे। ओके, तुम जरूर पियोगे, तुम्हें ये मौत का तजुर्बा देखना पड़ेगा। तो ये है वो बलिदान जो हर एक वाचा बांधा हुआ संत देता है, ठीक है। तो अभी ये सात बार नहीं है, सात बार का मतलब क्या है? हाँ, सात बार नहीं है का क्या मतलब है? ये हर एक का अपना अपना क्रॉस है, अपना अपना 144,000 का अपना अपना बलिदान परमेश्वर के सामने लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से परमेश्वर का पूरा जो न्याय है वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये पूरे संसार के लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए हैं ये दो बलिदान। तो ये जो दूसरा बकरा है, पहला बकरा तो मैंने बोला ना ये है वफादार, ये है कलीसिया, ये जो दूसरा बकरा है उसको कहाँ छोड़ा जाता है? उजाड़ में छोड़ा जाता है। तो उजाड़ में छोड़ा जाता है, ये कौन है वो ग्रुप जिन्होंने वाचा तो बांधी, दिखाया कि हम प्रभु में मर रहे हैं लेकिन मरे नहीं, जीवित ही हैं। जीवित ही हैं का क्या मतलब? बस संसार के लिए जीवित ही हैं। तो इस ग्रुप के बारे में क्या लिखा है, पढ़ लो मती 13:7।
कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए।
तो झाड़ियों में गिरे, अभी ये झाड़ियां क्या है? 22 में पढ़ लो, इसी की 22 में।
दो झाड़ियां में बोया गया वे ये है जो वचन को सुनता है,
सुनता है हाँ?
पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है।
इस संसार की चिंता
और धन का धोखा वचन को दबाता है।
तो ये है झाड़ियां, संसार की चिंता और धन का लालच वचन
को दबाता है।
तो ये है झाड़ियां, तो जब ये झाड़ियां हैं तो क्या करेंगी? जब वचन गिरेगा तो झाड़ियां दबा लेंगी, चिंता आएगी, अरे हम क्या खाएंगे कल को, हमारा क्या होगा, या दूसरी चिंता, रिश्तेदारियों की चिंता, या संसार को रखने की चिंता, संसार के रीति रिवाज पूरे करने की चिंता, या पैसा कमाने की चिंता। तो ये आत्मा रखने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आज आप देखो ईसाइयों, अगर आप देखना ही हो सत्य के तराजू पे डाल के, ईसाइयों को क्या चाहिए? पैसा, धन का इतना लालच, बाहर जाके सेटल होना है, अमेरिका जाना है। क्यों अमेरिका जाना है भाई? उधर पैसा है, डॉलर्स जब इंडिया में आते कन्वर्ट होते हैं, अमेरिका वाले आके बड़े बड़े कोठियां बनाई हुई हैं। ऐसी आत्मा रखने वाले तो नहीं हो सकते। मकसद क्या है अमेरिका जाने का आपका, है ना? हम उस दिन उदाहरण के तौर पे हम जवाहर के घर पे थे ना, तो बोल रहे थे हम तो अमेरिका चले जाएंगे, हम तो थोड़ी देर ही हैं इधर। अरे इधर क्यों? प्रभु का इधर काम नहीं है क्या? आप अपने आप को इतने बड़े वो मान रहे हो, आत्मिक लोग मान रहे हो, तो ऐसी योजना ही नहीं बननी चाहिए, सही ना ब्रदर? तो ये बातें हैं, इससे जब तराजू पे आती है ना ब्रदर बात, सत्य के तराजू पे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता है, और ना ही कभी परमेश्वर न्याय को झुठलाता है, और ना ही कभी अपने वचनों से मुकर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि चलो कोई बात नहीं रिलैक्सेशन दे दी, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होंगे धन का लोभ और संसारिक चिंता में पड़ के, ठीक है, वफादारी साबित नहीं करेंगे, तो फिर वो जाएंगे बड़े झुंड में। ठीक है, और इनका क्या है, उससे पहले मैं परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के वायदे बता देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलता है ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा। और दूसरी बात बोलता है मत्ती 6:33 में, क्या बोलता है? पहले मेरे राज्य की खोज करो, ये चीजें तुम्हारे साथ, जो जरूरतमंद चीजें होंगी वो तुम्हारे साथ जुड़ती जाएंगी। परमेश्वर जरूरतें पूरी करता है, इच्छाएं नहीं। आप क्या इच्छा करते हो उससे परमेश्वर को कुछ नहीं लेना देना। जब हम वाचा बांध लेते हैं, जब हम परमेश्वर के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा का अहंकार करना सीखो। मेरी इच्छा ये है, मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा प्रभु को स्वीकार नहीं है। क्या बोला? अपनी इच्छा का इनकार करो, अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जब हम संत बन जाते हैं, जब हम वाचा बांध लेते हैं, हमारी इच्छा खत्म। मैं क्या चाहता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना परमेश्वर को उससे फर्क पड़ता है, ना परमेश्वर उससे कुछ तस से मस होगा उसकी योजना से। उस वक्त हमें सिर्फ क्या क्या फर्क पड़ना है, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है वो पूरी हो, वो बता मुझे। ठीक है, तो ऐसा स्वभाव हम सबको डेवलप करना है। हम सब पहले अपने मन की करते हैं, हम भी कर रहे हैं, धीरे धीरे ये धीरे धीरे आता है। इसीलिए बोला ये लड़ाई जो है ना, ये मृत्यु तक की लड़ाई है, ये मृत्यु तक की लड़ाई है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन लेकिन ठोकर नहीं खाए। लेकिन हम तो प्रभु यीशु मसीह जैसे नहीं है, हम तो असंपूर्ण है, हमने तो पाप है, हमने तो और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका भी उद्धार होगा होगा, लेकिन कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। परमेश्वर जब क्षमा करता है, जो पाप क्षमा करने वाले नहीं होते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। दाऊद को, दाऊद के केस में देखा था ना, दाऊद ने बोला माफ कर दे परमेश्वर। दाऊद की एक अच्छी बात ये थी, वो अपनी गलती को मान लेता था। परमेश्वर के सामने गलती को माना और बोला परमेश्वर माफ कर दे। माफी तो मिली, लेकिन कीमत क्या देनी पड़ी
बेटा?
तो ऐसे ही मिलती है माफी परमेश्वर से। और ये भी, जो वफादार नहीं रहेंगे, बचाए तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा दंड तो मिलना चाहिए। तो पढ़ो पहला कुरिन्थियों 3:15।
यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते।
बचेगा तो सही, लेकिन जलते जलते। जलते जलने का मतलब पता क्या है? बड़ा भयानक टेस्ट आएगा, या बड़ी भयानक बीमारियां लग जाएंगी, या परिवार टूट जाएंगे, या काम बहुत नुकसान हो जाएगा, कुछ भी। बचेंगे तो सही, लेकिन चलते चलते। ठीक है, तो ये जो वाचा है ना, ये एक या दो दिन या एक महीने या दस महीने या एक साल या दो साल की वाचा नहीं है। ये वाचा है मृत्यु तक, और जो मृत्यु तक वफादार रहेगा वही क्या पाएगा? इनाम पाएगा। तो ये दो बकरे कौन है? एक तो छोटा झुंड और एक बड़ा भीड़। ठीक है, कलीसिया और बड़ी भीड़। ठीक है, दोनों की ही स्वर्गीय उदारता है, क्योंकि दोनों का लहू कहाँ पहुंच रहा है? स्वर्ग में पहुंच रहा है। इसका मतलब स्वर्गीय उदारता है। तो इसी के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये पवित्र प्रायश्चित के दिन के बलिदानों की पढ़ाई क्लास नंबर 32 यहाँ पे ही खत्म होती है। परमेश्वर इन वचनों के साथ हमें तसल्ली और हौसला दे, ताकि हम उसके प्रति और वफादार हों। परमेश्वर ही हम सबको आशीर्वाद करें। आमीन।